पार्ट हम ले रहे हैं, दैट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन, क्योंकि हम लोग सब भक्ति के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। भगवद गीता में हमने ये सीखा था कि भगवान ने भक्तियों को कितना महत्व दिया है। एक ही ऐसा पाथ है, एक ही ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम कृष्ण को उनके असली स्वरूप में समझ सकते हैं। 18वें अध्याय में शायद आप सुन रहे थे, एकमात्र भक्ति ही एक ऐसा साधन है। भक्ति भक्त्यमाम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और शायद 11वें चैप्टर में और मैं भी समझ रहा चैप्टर भक्तु भक्त्यातु अनन्वया शक्यम, भक्त्यातु अनन्वया शक्यम। तो भगवद गीता में भगवान बार बार इस बात को दोहराते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे समझ सकते हो। और भक्ति जो है, अगर उसका आचरण नहीं करते कोई, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अगर कोई इसका आचरण नहीं करता है, अगर वो मुझे शरणागत नहीं होता है, तो वो अपनी इच्छा पर स्वतंत्र होता है। और अधिकतर ऐसे जो लोग होते हैं कि जो अपनी मनमानी करके भगवान की शरणागत नहीं होते, ऐसे लोग अपने ही कर्म के आधार पर उनकी सारी इच्छाएं आशाएं सब कुछ विफल हो जाता है। मोघ आशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विपश्चिना
विचेतसा।
मोग उनका मोग आशा, उनकी सारी आशाएं नष्ट हो जाती, विफल हो जाती, उनके सारे कर्म, उनका सारा ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है, बेकार। कितना भी मेहनत करो सब बेकार है। विचेतसा आसुरिम राक्षसिम चैव प्रकृति मोहिनी पिता, राइट। तो ऐसे जो लोग होते हैं आसुरी या राक्षसी, वो प्रकृति के द्वारा मोहित हो जाते हैं और उनको नर्क के सबसे वर्स्ट सेक्टर में फेंक दिया जाता है। भगवान क्रूर नहीं है, लेकिन भगवान सबको अपने अपने कर्मों का परिणाम भुगतने का अवसर देते हैं। भगवान, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो सरखी, राइट में जाओगे गांधीनगर। आई थिंक अ मोर रेलेवेंट एग्जांपल कि आप कंटेनमेंट जोन में जाओगे तो आप कोरोना से प्रभावित हो सकते हो। अगर आप नॉन कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन में हो तो आप ज्यादा सुरक्षित हो। सो दैट मींस इट इज योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं। इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान आपको केवल ये बता देते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट्स इट। नाउ इट इज आवर चॉइस कि हम क्या करेंगे। मैं इसलिए बता रहा था ये पॉइंट क्योंकि हम भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और इसके कारण भक्ति के जो विज्ञान है भक्ति का और भक्ति के विषय जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको समझना बड़ा आवश्यक होता है। जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि भक्ति रसामृत जो ग्रंथ है, श्री प्रभुपाद उसको लॉ बुक कहते थे, दैट्स लॉ बुक फॉर इस्कॉन डिवोटीज, कि भक्ति के आचरण कैसा होना चाहिए ये भगवान बताते हैं, इस रूप गोस्वामी बताते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। सो इन दिस वे हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इसको अच्छे से समझे। और मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो कोर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, भक्ति रसामृत और ये भक्ति शास्त्र कोर्स, उस कोर्स का जो मटेरियल है पढ़ाने का, जो ग्रंथ जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है, और जो गाइडलाइन है वो इस्कॉन की जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उनके द्वारा तैयार की गई है, और इसलिए हमारे इन चर्चाओं के इस कोर्स का किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्तिगत समुदाय के साथ या किसी परिस्थिति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये शास्त्र का शुद्ध ज्ञान है और हम आपको गुरु परंपरा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है तो वो प्रश्न आप जेनरिक भाव से या जनरल लेवल पे आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, उसके लिए आप संकोच नहीं करना। और कहीं पर अगर आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न आपको व्यक्तिगत रूप से पूछने की इच्छा है तो उसके लिए भी आप वेलकम, आप कभी भी मुझे फोन पे या मैसेज पर पूछ सकते हो कि इसके विषय में आई कैन एलोबोरेट प्रॉपरली इफ यू वॉन्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन की इंट्रोडक्शन के मुख्य तीन भाग है, एक है मंगलाचरण, इंट्रोडक्शन के तीन भाग, एक है मंगलाचरण, दूसरा है इस ग्रंथ का वस्तु विषय वस्तु का वर्णन, और तीसरा है शुद्ध भक्ति की व्याख्या। संक्षिप्त में अगर हम आपको बताएं तो ये है, मंगलाचरण जो है वो पहले 6 पैराग्राफ तक है, फिर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये ग्रंथ का जो कंटेंट क्या है इसका इस बुक में क्या है वो 7वें पैराग्राफ में है, और बाकी का पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो शुद्ध भक्ति की व्याख्या पर आधारित है। मंगलाचरण जो है उसमें कई प्रकार है, अर्थात उसमें कौन से विषय को कवर किया गया है। तो एक है वस्तु निर्देश अर्थात डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव कि क्या बताया जाएगा, कौन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक का। फिर नमस्कार अर्थात प्रणाम करना, आशीर्वाद अर्थात इस ग्रंथ को सुरक्षित करना और साथ साथ में पढ़ने वाले भक्तों को आशीर्वाद देना, और इसके अतिरिक्त है जो नमस्कार, जो मंगलाचरण के तीन भाग हुए उसमें जो नमस्कार का जो भाग है उसमें गुरु वंदना और वैष्णव वंदना दोनों है। सो वी विल टॉक वन बाय वन। सो
हरे कृष्ण, ये आपने मतलब ये समझना चाहता हूँ मैं कि जैसे फर्स्ट लेक्चर में एनओडी के आपने गोस्वामी का के बारे में चर्चा किया था, आपने इंट्रोडक्शन समझाया था, और तो फर्स्ट पूरे सेशन में हमने वही देखा था राइट। और फिर आपने आपने वो बताया था कि भक्ति समय सिंधु किस तरह विभाजित हुई है, और आपने अलग अलग तरंग के बारे में बताया था कि भक्ति के जो जो तरंग है। तो दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरऑल भक्ति समय सिंधु का इंट्रोडक्शन,
दैट वाज प्रीफेस ऑफ भक्ति समय सिंधु
प्रीफेस। और फिर उसके बाद धीरा सागर प्रभु ने कुछ प्रीफेस के बारे में किया था राइट,
वो भोग त्याग से आगे का कुछ पार्ट मिस हो गया था बिकॉज टाइम कम पड़ा था, वो हाफ ऑफ द प्रीफेस ही डिड।
तो मतलब हम कैसे कर, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद प्रीफेस आएगा या प्रीफेस इंट्रोडक्शन के पहले आता है?
शुरुआत प्रीफेस से होती है,
शुरुआत
इंट्रोडक्शन आएगा फिर चैप्टर वन आएगा।
तो अगर हमें प्रीफेस खत्म हो गया है राइट, प्रीफेस फिनिश हो गया,
यस, तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन।
तो अगर जैसे मतलब, और फिर लास्ट सेशन में आई थिंक रमाकांत प्रभु ने जो लास्ट सेशन में एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया था, तो लास्ट सेशन में उन्होंने कुछ जो ऑडियो किया वो 10 मिनट का ही है, तो लास्ट सेशन बेसिकली कुछ उसमें कुछ नहीं हुआ था।
नहीं, नाउ दैट 10 मिनट्स यू कैन इग्नोर, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे।
ओके ओके, तो अभी जो तो दो ही सेशन हुए राइट इन दैट वे,
यस,
दिस इज द थर्ड सेशन,
यस।
और प्रीफेस के बारे में अगर जानना हो तो वी कैन हियर फ्रॉम एनी दीज टू लेक्चर, सो दैट इज सफिशिएंट राइट,
यस यस।
ओके, तो अभी नाउ वी आर डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन,
यस।
ओके,
यस। सो मंगलाचरण के विषय में कृष्णदास कविराज इसका वर्णन करते हैं कि मंगलाचरण कैसा होता है, क्या होता है मंगलाचरण, उसके विषय में बताया है। श्री प्रभुपाद जी मंगलाचरण के विषय में ऐसा कहते हैं कि मंगल आचरण यानी मंगलाचरण, अगर वो मंगलाचरणम का अर्थ प्रैक्टिकली ऐसा होता है इन्वोकिंग द ऑस्पिशियसनेस, मंगल की कामना करना, मंगल को आवाहन करना, इसको मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलाचरण में जैसे हमने आपको बताया तीन भाग है, एक है ग्रंथ का विषय, फिर प्रणाम और आशीर्वाद, ये तीन भाग है। पहले जो छह श्लोक है वो इसके अंदर सम्मिलित है। तो हम जो पहला पार्ट है उसको हम चेक कर, उसको पहले श्लोक को आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो पहला जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, वो इस ग्रंथ का जो मूल विषय क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, उसके चर्चा की गई, और वो है लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, भगवान कृष्ण जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और वो सभी रस के रिजर्वियर और स्त्रोत है, सब प्रकार के रस के स्त्रोत है, मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रस अमृत मूर्ति। कृष्ण रस अमृत के मूर्ति है, अखिल रस अमृत मूर्ति, अखिल का अर्थ है सब, रस अमृत मूर्ति। यस
प्रभु, दिव्य हरि प्रभु ने फोन किया था, वो बता रहे हैं कि उनका मतलब कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो जब वो ज्वाइन करेंगे तो एक बार हम ऑडियो सॉरी वीडियो बंद करके ट्राई करें, शायद मे बी उनको मतलब शायद बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं, वो निकल जा रहे है बार बार।
Is this better?
Yeah, so अभी तो वो ज्वाइन नहीं किया है, I think he has joined now.
Yes.
दिव्य हरि प्रभु आप बताना थोड़ी दो मिनट के बाद अगर आपको ठीक सुनाई दे रहा नहीं, क्योंकि आप बोल रहे थे ना कट की आवाज आ रहा है, तो आपको सुनाई दे रहा है अभी प्रभु?
आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे, तो उनका माइक म्यूट है क्या?
या माइक म्यूट है बट बोलिए प्रभु, दिव्य हरि प्रभु बोलिए। तो मे बी प्रभु आप कुछ और मतलब शायद कहीं और, आपका नेटवर्क का इश्यू है तो हमको भी आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, ऑडियो वीडियो बंद है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो मे बी आप कोई और बेटर जगह।
आप उस स्थान में जाइए जहाँ पर आपको अच्छा नेटवर्क मिलता हो।
हेलो,
दूसरे भक्तों को मेरी आवाज आ रही है?
यस प्रभु, यस प्रभु आ रही है,
आ रही है प्रभु भाई,
ठीक है।
एनीवे अगर दिव्य हरि प्रभु को केवल आवाज आ रही है तो दैट्स फाइन।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हाँ प्रभु, यस प्रभु,
हरे
हाँ,
हरे कृष्ण,
आपकी आवाज आ रही है प्रभु, आप
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण प्रभु, आपको आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है ना?
हाँ हाँ, यस
हरे कृष्ण
प्रभु, सो वी कैन हियर,
हरे कृष्ण।
ठीक है ठीक है, हो गया ऑडियो चेक हो गया।
हरे कृष्ण, आ रहा ना?
यस प्रभु,
ठीक है,
सो कैन वी स्टार्ट?
हाँ
यस प्रभु,
हाँ आ रही है, कंप्लीट आ रही है।
आई थिंक द वॉइस इज
ओके,
ओके, ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट. ओके, कृष्ण जो है वो इस पूरे ग्रंथ का मूल वस्तु है, विषय वस्तु, और कृष्ण सभी रस की मूर्ति है. इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने उस बुक में लिखा है, पर आई डोंट हैव हिंदी कॉपी और गुजराती कॉपी विद मी, तो मैं इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. श्लोक है, अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्रमर रुचि रुद्ध तारक पाली कलिता श्याम ललितो राधा प्रेयम प्रेयन विदुर जयति. दिस इज द फर्स्ट श्लोक. सो द ट्रांसलेशन इज, लेट कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड बी ग्लोरिफाइड by virtue of his expanding attractive features, he subjugated the gopis named Taraka and Pali and absorbed Shyama and Lalita. He is the most attractive lover of Srimati Radharani and is the reservoir of pleasure for all devotional mellows. यह translation. इसका अर्थ होता है कि भगवान कृष्णा की जो अखिल रस की मूर्ति है उनका जय हो, और वो अपने अपने विशेष गुणों से वो तारक और पाली नाम की गोपियों को वश में करते हैं, श्याम और ललिता जैसी गोपियों में मग्न होते हैं, और श्रीमती राधा रानी के सबसे आकर्षक प्रियजन है, और वो सभी प्रकार के भक्ति के रसों के स्रोत है. तो इस श्लोक का जो मूल उद्देश्य है वो है कि कृष्ण का जो मुख्य स्वरूप है वो रसमय है, प्रेम पूर्वक उनका, ही इज फुल ऑफ लव. कृष्ण रस से पूर्ण है. कृष्ण कोई जड़ वस्तु नहीं है. कृष्ण कोई वो एटलास जैसा नहीं है कि वो संसार का बोझ सिर पे उठाए हुए पसीने से मरे हुए, ऐसा नहीं. कृष्ण इज नॉट लाइक दैट. इसलिए प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण और नारायण में कितना अंतर है. नारायण को अगर आप हाईकोर्ट जज का रूप में अगर देखते हैं तो वो एकदम जज कैसे होते हैं, मेजेस्टिक और पावरफुल फिगर होते हैं, राइट. कोर्ट में जाते सर सब खड़े हो जाते हैं, योर ऑनर योर ऑनर. लेकिन जब वो अपने घर में होते हैं जो वही जज, तो कभी कभी उनको सब प्रकार के अलग अलग प्रकार के रसों का आदान प्रदान वो करते हैं. एक मधुर व्यक्ति होते हैं, वो सबके साथ अच्छा रस के साथ व्यवहार करते हैं. उनके माता पिता के सामने वो एक विनम्र बेटा होता है, और उनके मित्रों के साथ वो बहुत ही लाइट डीलिंग करते हैं, और जो उनके पत्नी के साथ वो एक प्रेमी की तरह बिहेव करते हैं. तो इसी तरह से भगवान जो है वो हाईकोर्ट के जज नहीं है. कृष्ण जो है इज अ फुल ऑफ लव. वृंदावन में जब कृष्ण अपनी माधुरी को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके सब प्रकार के जो रस है वो कृष्ण में देखने को मिलते हैं. नारायण में सब रस नहीं मिलते हैं. विशेष करके जो चार रस है वो नारायण में नहीं होते. इसमें ये चार प्रकार के जो रस होता है, कभी कृष्ण को किसी कंधे पे बिठाना पड़ता है अपने मित्र को, कभी 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 वो माता की डांट खानी पड़ती है. तो इस प्रकार के जो रस है अलग अलग, दैट इज ओनली कृष्ण के पास है ये, और किसी में ये रस नहीं है. इसलिए कृष्ण को यहाँ पर अखिल रसा अमृत मूर्ति कहा गया है. और वृंदावन का कृष्ण, ये वृंदावन कृष्ण वही एकमात्र इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है और कुछ नहीं है. दैट इज द ओनली थिंग. उसी विषय का चर्चा किया गया. श्री प्रभुपाद जी इसके विषय में कहते हैं कि कृष्ण के संबंध में बहुत सरकार के रस जुड़े हुए होते हैं. जैसे कुछ भयानक रस होते हैं. भीष्म जो है वो भगवान को तीर बाण मार के उनको खून निकलता था भगवान को, जो भीष्म का जो बाण आता था, तो उसमें भी कृष्ण को आनंद आ रहा था. उसकी तुलना ऐसी की गई आचार्य द्वारा कि अगर कोई अपने प्रिय जन होता है उसको कभी कभी प्रेम वश दांत मारते हैं, बाइट करते हैं, फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति उसको आनंद, उसको प्रेम ही, उसका प्रेम स्वीकार करते हैं। इन द सेम वे कृष्णा सब प्रकार के रसों का आस्वाद करते हैं। जैसे कृष्ण ने माता के रूप में पूतना को माता के रूप में स्वीकार किया, फिर गोपियां जो आई थी वो अपने कुछ गोपियां अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आई थी, कुछ गोपियां माता के रूप में कृष्ण को देख रहे थे। जैसे अब रंगमंच की अगर हम बात करें, जब कृष्ण वहां मथुरा में थे तो उस समय कुछ लोग कृष्ण को एक सुंदर लड़के, जो युवान लड़कियां थी वो कृष्ण को एक कामदेव जैसा देख रहे थे, कंस कृष्ण को यमराज जैसा देख रहे थे, कुछ कृष्ण के जो मित्र थे वो कृष्ण को अपना प्रिय सखा देख रहे थे, और कई सारे बुजुर्ग लोग थे जिनको वात्सल्य प्रेम था भगवान के प्रति, वो कृष्ण को एक छोटे से टेंडर, एक नाजुक से एक बालक के रूप में देख रहे थे। तो इस तरह से सब अलग अलग, कुछ लोग भगवान को भगवान देख रहे थे, कुछ लोग कृष्ण को भगवान के रूप में देख रहे थे। तो इसलिए सभी प्रकार के रस एक ही व्यक्ति से स्फुरित होते हैं, इसलिए सभी प्रकार के रस का खजाना कृष्ण है, और यही कृष्ण इस ग्रंथ का मुख्य विषय है और गोपियों को आकर्षित करने वाले है, ऐसा भी श्लोक में बताया गया है। तो भगवान के अपने अनेक अनेक ऐसे गुण है, आध्यात्मिक गुण, जिसके द्वारा वो गोपियों के मन को हरते हैं। गोपी कुपांगना जना चित्त विरोधन, गोपी जन गोपियों का मन हर लेते हैं। तो यहाँ पर पांच गोपियों का नाम रूप गोस्वामी ने उच्चारण किया है, एक है तारका और पालिका, श्यामा एंड ललिता, और श्रीमती राधा रानी। तारका और पालिका जो है वो कृष्ण की उन सखियों में, उन गोपियों में है कि जिनका, जिनको कृष्ण अपने वश में करते हैं, अर्थात उनका जो अफेक्शन है भगवान के प्रति वो थोड़ा सा बिगिनिंग वाला है, आई मीन इट्स नॉट अ बिगिनिंग, इट्स हाउ यू से, इट्स काइंड ऑफ लोअर इन कंपैरिजन, यू नो लेसर स्टेचर, ऐसा बोल सकते हैं। तो कृष्णा का जो तारिका और पालिका का जो गुण है वो कृष्णों को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ मीडियम जो गोपियां हैं वो है श्यामला और ललिता। ये श्यामला और ललिता कृष्ण उनको अपने बराबर के समान गिनते हैं, और जो सुप्रीम गोपी है श्रीमती राधा रानी, तो कृष्ण उनको उनके वश में हो जाते हैं, उनको आनंद देते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के गोपियों का संक्षिप्त में वर्णन है। सो दैट इज द समरी ऑफ द श्लोका। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रस, तो जैसे हमने पहले बताया कि रस पांच मुख्य रस है, पांच मुख्य रस आपको जानते हैं कौन से है, प्राइमरी रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, और सात जो है वो सेकेंडरी है, बारह रस है टोटल, तो सात सेकेंडरी रस है, उसमें हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, कारुण्य, विभत्स एंड अद्भुत, ये सात रस सेकेंडरी है। द मेन जो रस है
हास्य, वीर, रौद्र, फिर
भयानक,
भयानक,
करुणा, विभत्स, अद्भुत।
ओके,
तो टोटल बारह है, पांच मेन है प्राइमरी रस और सात सेकेंडरी रस, टोटल बारह रस। तो ये तीन प्रकार की गोपियों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। अब रूप गोस्वामी का जो आगे का जो वर्णन है उसमें वी टॉक अबाउट सेकेंड वर्स। सेकेंड वर्स में रूप गोस्वामी क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं।
हरे कृष्ण। प्रभु आपने बताया 64 वर्सेस 60 नारायण और कृष्ण में, तो इसमें वेणु माधुरी है, लीला और कौन से जो है प्रभु?
वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी और रूप माधुरी।
यस थैंक यू।
सो दिस इज नाउ सेकंड पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। इसमें रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि मैं सभी मनुष्य में अधम हूं और मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, और इस ग्रंथ को, ये आध्यात्मिक ग्रंथ को जो भक्ति के विषय में है, उसको लिखने का जो प्रेरणा है वो मुझ पर कृपा करके दिया गया है, इसलिए मैं मेरा प्रणाम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करता हूँ जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जिन्होंने इस ग्रंथों को की रचना करने के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया। वंदे चैतन्य देवस्य हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोहम वारक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। श्लोक सो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने पर्सनली रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत का जो पूरा ज्ञान है वो सिखाया, जिसके हमने चर्चा एक बार आपको पहले बताई थी। सो श्रील प्रभुपाद को भक्ति रसामृत के विषय में, भक्ति के विषय जो ज्ञान है वो उनके आध्यात्मिक गुरु अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको सिखाया था। दैट मीन्स भक्ति रसामृत जो ग्रंथ हम चर्चा कर रहे वो प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, जो कि समरी स्टडी है भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ का, अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु विशाल ग्रंथ है जिसकी रचना रूप गोस्वामी ने की है, और श्री प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन अर्थात भक्ति रसामृत। सो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती और रूप गोस्वामी दोनों के द्वारा प्रेरित हुए हैं। सो उनके इसलिए इसकी समरी के रूप में वो दोनों को ही प्रणाम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी को और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उन दोनों को ही प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति सामृत सिंधु नाम के इस ग्रंथ की समरी को कंपाइल करने में लगा हुआ हूं। सो दिस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेकंड पैराग्राफ।
प्रभु हरे कृष्णा, जैसे आपने बताया तो मैं वही, मेरा वही क्वेश्चन था आपने बताया उसके पहले, तो मतलब ये है ना कि प्रीफेस और इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने लिखा है और जो मेन कंटेंट है वो सेम जैसे वहां से सिंधु में से जो भी समरी प्रभुपाद ने लिया है और जो श्लोक लिया है उसका प्रभुपाद ने भाषांतर अनुवाद किया है, राइट?
यस यस, एक्चुअली इवन द इंट्रोडक्शन जो है, जिस इंट्रोडक्शन को हम पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन भी रूप गोस्वामी के इंट्रोडक्शन के आधार पर ही लिखा हुआ है।
ओके,
लेकिन ये चले प्रभुपाद जी का समरी स्टडी है, इसलिए कंबाइंड विथ रूप गोस्वामी इंट्रोडक्शन एंड प्रभुपाद इंट्रोडक्शन।
तो प्रभु मतलब जैसे आप बता रहे, मेरे घर पे भी अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास हिंदी या गुजराती या कोई कॉपी बुक है नहीं, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी है। तो मतलब जो मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक देखा नहीं है बुक खोल के, तो उसमें संस्कृत श्लोक होते हैं या सिर्फ अनुवाद होता है?
केवल अनुवाद होता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में श्लोक को अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। अगर आपको उसका नंबर चाहिए तो आई कैन गिव यू द नंबर।
मतलब क्योंकि मतलब जैसे काफी भक्ति रसामृत सिंधु से काफी श्लोक है जो पॉपुलर है, जिसमें प्रभुपाद और हम जो काफी जगह पे वहां पे रेफरेंस किया हुआ है, मैं वही सोच रहा था। तो वो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक से लिए हुए हैं।
अखिल रसामृत जो श्लोक पहला बताया था मैंने, वो मध्य 8 चैप्टर 142 टेक्स्ट नंबर है।
ओके,
और सेकेंड वाला जो है मध्य 19 134 टेक्स्ट नंबर। आई मीन ऑफ कोर्स सब सब हर एक श्लोक का नहीं बता रहे, लेकिन मेन मेन श्लोकों को हम आपको बता रहे हैं. So this is the summary of two paragraphs. Now we go to third paragraph of Shukla, जिसमें रूप गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये भक्ति रसावृत सिंधु नाम के ग्रंथ को रचना करने का जो मूल उद्देश्य है वो अपने गुरु को प्रसन्न करना है. श्री प्रभुपाद जी भी अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम पिछले पैराग्राफ में किया थे, और इसका अनुवाद प्रभुपाद इस तरह से करते हैं इस पैराग्राफ में कि रूप गोस्वामी अपने इस महान ग्रंथ का शुरुआत करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री सनातन गोस्वामी को प्रणाम करके, जो कि उनके बड़े भाई भी थे, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये ग्रंथ उनको प्रसन्न करे, ये ग्रंथ के माध्यम से वो प्रसन्न हो. और एक जगह आचार्य लोग ऐसा भी कहते हैं, हमारे वैष्णव आचार्य, कि सनातन शब्द का जो उपयोग उन्होंने किया है वो सनातन शब्द कृष्ण के लिए भी उपयोग हो सकता है, बिकॉज कृष्ण इज ऑल्सो इटर्नल लॉर्ड. तो एक सनातन शब्द का उपयोग करके रूप गोस्वामी ने गुरु और कृष्ण दोनों को एक ही शब्द से प्रणाम किया, जस्ट बाय वन वर्ड यूजिंग सनातन. ही ऑफर ऑब्लिगेशंस टू रूप सनातन गोस्वामी एंड कृष्ण ऑल्सो. चौथे पैराग्राफ में वो कहते हैं कि मैं सब प्रकार के महान भक्तों और आचार्यों को अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं, जिनकी तुलना की गई है शार्क मछली की. शार्क मछली जो कि महान समुन्द्र में, अमृत के समुन्द्र में उनके समान की तुलना की जाती है. और those who do not care for the various rivers of liberation. तो शार्क जो है उसको मगरमच्छ नहीं बताया था, शार्क का अर्थ होता है विशाल मछली. तो शार्क का उपयोग क्यों किया गया है, इसके विषय में तीन कारण रूप गोस्वामी कनेक्शन में है. शार्क केवल समुद्र में रहता है, शार्क मछली, इसलिए भक्तों की तुलना की गई है शार्क मछली के साथ. सेकंड है शार्क जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट शार्क इज, तिमंगल क्या बोलते हैं, शार्क जो होती है वो नदियों को ठुकरा देती है, और शार्क कभी किसी मछुआरे के जाल में फंसती नहीं है. तो ये तीन स्पेशल क्वालिटी है शार्क का उदाहरण प्रस्तुत करने के पीछे. और शार्क जो है उसकी तुलना भक्तों के साथ की है, भक्तों की तुलना शार्क के साथ की है. तो जो पहला उदाहरण है कि शार्क केवल समुद्र में रहना पसंद करती है, इसका अर्थ होता है कि वो भक्ति के महान सागर में आनंद से तैरना पसंद करते हैं, वो बड़ा सागर चाहिए उसको. इसका अर्थ होता है कि भक्ति से या कृष्ण भक्ति के आनंद के अतिरिक्त कोई भी निम्न प्रकार का आनंद के विषय में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल शार्क जो होती है वो किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदियों में, वहां पर रहना पसंद नहीं करते, उनको समुन्दर ही चाहिए. अर्थात जो शुद्ध भक्त होते हैं उन लोग को भक्ति का ये सागर चाहिए. सो दे नॉट प्रिफर टू गो फॉर लेसर प्लेजर. द सेकेंड रीजन ऑफ द यूजिंग शार्क वो ये है कि वो सब प्रकार की जो नदियां हैं उसका त्याग कर देता है, दे रिजेक्ट उसका अस्वीकार कर देते हैं. इसका प्रभुपाद जी इसको तुलना करते हैं कि नदियां जो अल्टीमेटली सागर में जाके मिलती है, और इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं, निराकारवादी लोग होते हैं, उन लोग को भगवान में मिलने का बड़ा शौक होता है, मर्ज होने का, जिस तरह से नदियां समुद्र में मिल जाती है. लेकिन वो समझ नहीं सकते इस चीज को. अगर अगर आत्म साक्षात्कार के मार्ग, अलग अलग मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग, अलग अलग जो हम छठे पहले छह अध्याय में पढ़े थे ना गीता में, तो आत्म साक्षात्कार के योगा लेवल के अलग अलग जो पाथ है उसको अगर आप प्रीवर की तुलना देते हो तो भक्त तो जो मनुष्य होता है वो उसके अंदर मछली के समान होता है, अर्थात वो नदी नहीं बन जाता. ज्ञान योग गीता ये सब दीज आर ऑल पाथ. नदी समुद्र में मर्ज हो जाती है, लेकिन मछली जो होती है वो मर्ज नहीं होती. इसका अर्थ होता है कि भगवान में जो जीव होता है वो विलीन नहीं हो जाता. इसलिए बहुत सारे एक्वेटिक्स होते हैं नदियों में, लेकिन उन लोग का जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल वैसे के वैसा रहता है. इन अदर वर्ड्स, भक्त लोग किसी प्रकार के कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सब प्रकार की नदियों की परवाह नहीं करते जो कि अंत में जाकर समुद्र में मिलते हैं. इसलिए वो सीधा प्रिफर करते कि वो समुद्र में ही रहना पसंद करते. दे डोंट बॉदर कि इसमें नदियों में गए. तो वो लोग मुक्ति नाम की अलग अलग प्रकार की जो नदियां हैं उसको वो इग्नोर कर देते. दे इग्नोर. श्री प्रभुपाद कहते हैं इसके विषय में कि द रिवर एंड ओशन का जो एनोलॉजी है उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने डिटेल में बताया है. यू मस्ट फर्दर कंसिडर दैट द सुपरफिशियल वॉटर मिक्सिंग विद द ओशन इज इवोपरेटेड बाय द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. नदियां समुद्र में मिलती है और उसका इवोपरेट होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो इवोपरेट होता है सूर्य की गर्मी से, और फिर धीरे धीरे वो क्लाउड बनता है, और फिर जो वाटर होता है वो वापिस बारिश के रूप में गिरता है. सो वाटर दैट मर्ज इन द ओशन, जो नदी समुद्र में आके मिली थी वो अभी इवोपरेट होकर के आकाश में चली गई और फिर वापस गिरेगी समुद्र में. तो ये आवागमन चलता है, लेकिन मछली का इवोपरेशन नहीं होता. मछली इवोपरेट नहीं होती, एक्वेटिक्स होते वो इवोपरेट नहीं होते. तो इस तरह से हम एक व्यक्ति है और हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान के साथ अपना अस्तित्व कायम बना के रखना है, हमेशा के लिए बना के रखना, ये हमारा उद्देश्य है. सो दैट एग्जाम्पल वी शुड अंडरस्टैंड इन दिस वे, कि नदी और ओशन का एग्जाम्पल है. तो वी डोंट गो इन टू डिटेल, बट दिस इज द समरी ऑफ द एग्जाम्पल. एंड थर्ड जो रीजन है वो है कि शार्क जो होती है वो मछुआरे की जाल में फंसते नहीं कभी, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भक्ति रस के समुद्र में इतने गहराई में डूबे होते हैं कि वो जन्म मृत्यु रूपी जाल होती है माया की, उनको काल के प्रभाव में नहीं आते. दिस इज देयर स्पेशल क्वालिटी. सो दिस थ्री एग्जाम्पल फॉर द शार्क. एंड फिफ्थ वर्स पे ऐसा बताया गया है, रूप गोस्वामी बेनेडिक्शन को आवाहन करते हैं आशीर्वाद का. विशेष करके वो तुलना करते हैं कि अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स और जो लॉजिक्स होते हैं उसको समुन्दर के गहराई में, कभी कभी क्या होता है वॉल्केनो इरप्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्केनो इरप्शन को क्या बोलते हैं,
ज्वालामुखी.
तो ज्वालामुखी फटता है समुन्दर की गहराइयों में, लेकिन समुन्दर इतना विशाल होता है, उसका जल इतना विशाल होता है कि उस समुन्दर में कहीं अंदर में कहीं ज्वालामुखी फटने पर उसकी असर कहीं बिल्कुल मिनिमम होती है, कुछ नहीं होता इसका असर. इस तरह से इस ग्रंथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े तार्किक फिलोसॉफिकल लोग, जो लोग भक्ति रस की महिमा को नहीं जानते, वो लोग इस ग्रंथ को किसी प्रकार से कोई हार्म या कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे. और साथ साथ में रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि जो कोई भक्त इस ग्रंथ को पढ़ेगा इस तरह से, उनको यह आशीर्वाद दिया जा रहा है कि वो सब प्रकार के मायावादी गलत विचारों से अपने आप को मुक्त कर लेगा. यू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिसकंसेप्शंस. फिर छठा पैराग्राफ है आगे का.
क्वेश्चन, जैसे आपने बताया ये इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि वॉल्केनी ज्वालामुखी जब फटता है तो जैसे ग्रंथ है वो सुनिश्चित सुरक्षित रहता है कि वो प्रभावित नहीं होता है. तो क्या जैसे आपने बताया कि जो इसकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं वो भक्ति इस तरह से डीप हो जाते हैं कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, पर्सनल प्रॉब्लम्स आए या भक्ति में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, तो वो भी स्टडी रहते हैं और वो ज्वालामुखी भले अंदर से वो बहुत ही व्यथित तो दुखी हो सकते हैं मगर बाहर वो मतलब इस तरह से स्टेबल होते हैं, उनकी साधना अफेक्ट नहीं होती. कैन वी टेक इट दैट वे?
नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि भक्त लोग अपने वो बहुत डीप होता है भक्ति रस में, इसलिए वो अंदर से भी दुखी नहीं होते. बिकॉज वो इस प्रकृति के जो लिमिटेशंस है या उसकी जो दुखालय नेचर जो है उसका, उन सबसे पूर्ण रूप से अवगत होते हैं और अज्ञानता उनको प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी तरह से.
या मैं समझ गया प्रभु. सो या मतलब आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ कि वो अंदर से दुखी होते हैं और बाहर से ऐसा दिखावा नहीं करते, वो अंदर से भी मतलब बाहर से सेम होते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअली किसी व्यक्ति स्पिरिचुअली वीक पड़ जाता जैसा लग रहा है, या फिर उसके कोई स्पिरिचुअल ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे हो जिसकी वजह से उसकी भक्ति अफेक्ट हो रही हो ऐसे, तो ये ग्रंथ के माध्यम से वो स्टडी रह सकता है. इज इट लाइक दैट?
यस, ये ग्रंथ उसको एक शक्ति देगा, एक क्षमता देगा कि जिसके द्वारा वो प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग प्रकार की जो कसौटियां या कष्ट होते हैं उसके सामने वो स्थिर रह पाएगा. सो दैट इज व्हाट यू नो, आगे इस एक श्लोक आएगा गोस्वामी के द्वारा जिसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी कवर किया गया है. व्यक्ति अपनी भक्ति में स्थिर रह पाता है, कायम रह पाता है, उसमें उसको कोई उसका नुकसान नहीं हो सकता है. सो ये ग्रंथ एक्चुअली बहुत सुंदर है, नेक्टर ऑफ डिवोशन. प्रभुपाद ने शायद लेक्चर में बता रहा था कि राधा दामोदर मंदिर आप सबने इसने देखा है, आप में से कितने भक्तों ने देखा राधा दामोदर मंदिर?
हमने देखा है प्रभु.
अरे तो देखा है, ओके. और किरण प्रभु एंड कृपा विश्व प्रभु?
यस प्रभु देखा है.
यस प्रभु देखा है.
और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी लॉकडाउन के बाद चले जा सकते हैं. तो राधा दामोदर मंदिर जो है ना, वहां पर रूप गोस्वामी का समाधि है और वहां पर भजन कुटीर है. तो ये छह गोस्वामी एक साथ बैठ करके श्रीमद भागवतम की चर्चा करते थे, जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पर एक खुला, अभी तो सब बदल रहा है लेकिन पहले वो खुला एक ओपन प्लेस था जहां पर प्रभुपाद जी भी लेक्चर देने जाते थे. सो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पर श्रीमद भागवत पढ़ते थे. दूसरे जो गोस्वामी विशेष करके रूप सनातन गोस्वामी वो श्रवण करते थे और जीव गोस्वामी उस पर कमेंट्री लिखते थे और विशेष करके उन्होंने कृष्ण सुंदर वहां पर लिखा था. तो ये वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर बहुत बहुत पवित्र स्थान है. सो प्रभुपाद यूज टू से दैट वही उसको ही देखते थे प्रभुपाद बार बार. यही प्रभुपाद को जो इंस्पिरेशन प्राप्त होता था इसी स्थान को देख करके.
जैसे ये एक फेमस प्रभुपाद का लीला है कि जैसे किसी मतलब जैसे मैंने मुझे थोड़ा बहुत याद है कि प्रभुपाद वो रूप गोस्वामी की समाधि के आसपास कीर्तन कर रहे थे और फिर उनके गले में एक माला आ गया था और वो फूल का माला, वो फूल आपको पता होगा वो पास टाइम तो वो वही जहाँ पे अभी रिनोवेशन हो रहा है, दैट वॉज द सेम प्लेस राइट?
यस, रिनोवेशन. प्रभुपाद का कमरा जो है उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी पहले, अभी भी होगा. उस खिड़की में से प्रभुपाद को रूप गोस्वामी का समाधि सीधा दिखता था एंड दैट इज द प्लेस एक्चुअली वो कभी कभी प्रभुपाद रात रात जग जग करके अपना कार्य करते थे और वो रात को भी वो रूप गोस्वामी की समाधि को देखते रहते थे, उनको इंस्पिरेशन मिलता रहता था. सो देर आर सर्टन पास्ट टाइम्स कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर बट देर इज द एक्चुअली प्लेस. प्रभुपाद कहते हैं कि these are inspirations to Temera. So these are some of the paragraph we have taken. Now let us talk about the chatha paragraph, jo Mangala Charan ka main antim paragraph mein se hai. Chatha paragraph mein Rupa Goswami do slokon ka upyog karte hai, jisme Chaitanya Mahaprabhu se unko jo inspiration prapt hua, uske vishay mein wo kehte hai aur apne aap ko asamarth prastut karte hai. श्री प्रभुपाद जी समाधि के रूप में ऐसा बताते हैं कि एक प्रचारक भक्त का वास्तव में यही एक जो मूड होना चाहिए कि एक जो कृष्ण भावनामृत संस्था में इस आंदोलन में जो हमारे जितने भी प्रचारक भक्त है उनका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए. आई एम रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम बुक फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ श्री रूप गोस्वामी. रूप गोस्वामी के चरण कमल का अनुसरण किया जाए. We should never think of ourselves as great preachers, but should always consider that we are simply instrumental to the previous acharyas. हमें कभी अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े प्रचारक हैं. हम केवल यही सोचना चाहिए कि हम हमारे पूर्व आचार्य के एक केवल एक साधन मात्र है और कुछ नहीं है. और केवल उनके चरण कमलों को अनुसरण करने से हम इस दुखी मानवता के लाभ के लिए थोड़ा कुछ सेवा दे पाएंगे. That's it. और कुछ नहीं. और रूप गोस्वामी इसके विषय में कहते हैं कि ये ग्रंथ मैंने जो लिखा ये जो मैं जिसकी मैं रचना कर रहा हूं इस ग्रंथ को लिखने के पीछे जो बल मुझे प्राप्त हुआ है वह भक्तों को प्रसन्न करने की इच्छा. और इसलिए उन बाकी सारे भक्तों को वो आशीर्वाद भी देते हैं कि जो भक्त इस ग्रंथ को पढ़ेगा उनको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा. इज गिविंग दैट बेनेडिक्शन आल्सो. सो नाउ द फॉलोइंग जो पैराग्राफ्स है वो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है उसका कंटेंट है अर्थात उसका विषय क्या है इसके अंदर. तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसको एक समुद्र की तरह उसको समझना चाहिए और समुद्र में चार दिशाएं अलग अलग है. उत्तरी समुद्र, दक्षिणी समुद्र, पूर्वी समुद्र, पश्चिमी समुद्र, लाइक दैट. और उस कि जो सब डिवी सब सेक्शन है उसको वेव्स के रूप में माना जाता है. जो पहला भाग है उसमें चार वेव्स है, चार तरंग है जिसमें भक्ति का सामान्य वर्णन है. सेकंड वेव है, पहला वेव भक्ति का सामान्य वर्णन, दूसरा वेव है भक्ति के पालन के नियम नियमावली रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, तीसरा है भाव में भक्ति और चौथा है तीसरा है भाव भक्ति और चौथा है अंतिम प्रेम. सो दीज आर द फोर डिविजन्स ऑफ ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड पूर्वी तरंग. दक्षिण जो साइड है वो रसों का ओवरव्यू है जिसमें विभाव, अनुभाव, सात्विकी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थाई भाव, ये पांच प्रकार के रस का ओवरव्यू है दक्षिण समुद्र में. पश्चिम समुद्र में यस प्रभु.
वो ये आपने बताया दक्षिण वाला वो बुक में नहीं है ना इंट्रोडक्शन में?
नहीं वो इंट्रोडक्शन में नहीं है, ये हम ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन बता रहे संक्षिप्त में.
तो प्रभु वो आप फिर से बताएंगे सदन वाला?
यस, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, एंड स्थाई भाव. फिर पश्चिम में, पश्चिमी जो साइड है उसमें पांच प्राइमरी रस है जिसके मैंने ऑलरेडी चर्चा की आपके साथ. माधुर्य ये पांच, और उत्तरी जो है उसमें सेकेंडरी रस जिसकी मैंने ऑलरेडी चर्चा की आपसे.
प्रभु तो जैसे आपने बताया था कि हम मोस्टली ईस्टर्न जैसे बताया करेंगे, और बुक में आपने अपने वो डिस्क्रिप्शन बताया था 19 चैप्टर तक का है. तो फिर ये सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं या उसके बारे में कुछ पता चलेगा हमें, या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
यस यस, हम उसकी चर्चा करेंगे. हम 19 चैप्टर में जितना कवर होता है, जैसे हमने पहले एक बार चर्चा किया था कि जो चार प्रकार के तरंग है उसकी हमारा सिलेबस में उसका इंक्लूड हुआ है. बाकी के जो जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी विल जस्ट गिव सम ओवरव्यू लेटर ऑन. चार तरंग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें है सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति.
तो मतलब ये सिलेबस में है क्योंकि ये नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक में है इसलिए, और ये जो बाकी आप बोल रहे हैं सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न ये बुक में नहीं है, ऐसा है?
नहीं, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं है.
तो अच्छा, तो 19 चैप्टर के बाद, 19 चैप्टर के बाद भी चैप्टर्स है.
यस, तो पहला चैप्टर है सामान्य भक्ति और इंट्रोडक्शन.
यस यस,
अध्याय 2 से 16 है साधन भक्ति, 17-18 भाव भक्ति और 19 प्रेम भक्ति.
ओके ओके, यस प्रभु, थैंक यू. और जो 19 के बाद जो है वो बाकी दक्षिणी और पश्चिम और उत्तरीय तरंग वो उसमें है. ओके,
और जिसको जिसको हमने अभी सिलेबस में नहीं रखा है भक्ति शास्त्र में. Yes. So, और किसी को कोई प्रश्न है? और वी कैन गो फर्दर. अच्छा, अभी तक जो हमने बताया, जो आपके सामने प्रस्तुत किया, वो केवल समरी के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे. तो क्या वो समझने में आपको आसान लग रहा था या फिर मुश्किल लग रहा था? आई कैन गेट सम फीडबैक.
समझ आ रहा है प्रभु.
ओके, और ड्यूटी का किसी का फीडबैक कि वो इज इट कॉम्प्लिकेटेड और इज इट सिंपल?
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है प्रभु.
ओके ओके, और कोई विभक्त? अच्छा, जहां पर मुश्किल लग रहा है वो पार्ट आप बता सकते हैं, कौन सी चीज मुश्किल लग रही थी?
वो जो आपने डिवीजन बताया ना.
हाँ, यस, डिवीजन
पूर्व पश्चिम दक्षिण.
हाँ, दैट्स फाइन. देखो, हम केवल पूर्वी समुद्र की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बाकी के दक्षिण, उत्तरी और पश्चिमी जो समुद्र है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करने वाले. वो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है. और जहां तक हम चर्चा करने वाले हैं 19 चैप्टर में, उसमें तो केवल सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, दैट्स इट. तो दैट वुड बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा. बाकी जो अनुभव, विभाव इत्यादि जो हमने बताया था आपको, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू नो, ये 19 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद उस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा आसानी रहेगा. तो इसलिए उस विषय में सोचना भी छोड़ देना कि बाकी के जो तीन प्रकार के जो समुद्र है उसका क्या डिटेलिंग है, इट इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। चार समुद्र है तो हम तो केवल एक ही साइड की बात करेंगे, तो बाकी तीन में क्या है, दैट्स इट, दैट वाज द ओनली इंटेंशन टू मेंशन दैट।
ओके प्रभु।
या ओके, सो नाउ वी कैन गो फॉर द डेफिनेशन, द रेस्ट पार्ट ऑफ डिवोर्स, इंट्रोडक्शन। शुद्ध भक्ति की व्याख्या, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, और आई थिंक ये आपका KMV होगा। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानु सीलनम भक्ति उत्तमा। दिस इज KMV भी है, ये परिभाषा सूत्र भी है। परिभाषा सूत्र का अर्थ होता है कि जो एक श्लोक के अंदर सब कुछ बताया जा रहा हो, दैट्स अ डेफिनेशन। इस श्लोक का संस्कृत हम आपको भेज देंगे अगर आपके पास है, नहीं है तो, और इसको अगर आप देखना चाहते हो तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 श्लोक संख्या 167 इसके अंदर इसका श्लोक अनुवाद है। So, इसका अनुवाद मैं जस्ट पढ़ता हूं आपके सामने। When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires. Knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive actions. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. Now let us divide the sloka. Anya abhilashita shunyam. Anya ka arth hota hai dusra kuch. Abhilashita ka arth hota hai इच्छा का जो स्वभाव, शून्यम अर्थात उससे मुक्त होना, किससे और क्या क्या है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो ज्ञान कर्म आदि से ढकी हुई नहीं है, अनावृतम, और आनुकूल्येन, अनुकूल भाव से किया जाता है, कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन अर्थात कल्टीवेट किया जाता है प्रवृत्ति के रूप में, कॉन्स्टेंटली सेवा के माध्यम से, कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम, ऐसी भक्ति को उत्तम भक्ति माना जाता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति। अर्थात दूसरे शब्द में शुद्ध भक्ति वो एक प्रकार की एक्टिविटी है या प्रवृत्ति है जो आपको हमेशा व्यस्त रखती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना ही है, और उस उद्देश्य में अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, और किसी प्रकार के फिलोसॉफी या किसी प्रकार के कर्मों के द्वारा वो ढकी हुई है। इज दैट मेक सेंस, इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड? शुद्ध भक्ति दूसरे शब्दों में इजी तरीके से, शुद्ध भक्ति ये ऐसा कार्य है जिसमें निरंतर कार्य कार्य है, एक्टिविटी है, जिसमें कुछ पड़े रहना नहीं है, यू नो, नॉट जस्ट आप पेड़ ढूंढो और पेड़ के नीचे अब चद्दर बिछा और सो गया। इस भक्ति जो है वो एक्टिविटी है, फुल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें आपको बहुत काम करना पड़ता है, और उस एक्टिविटी वो कार्य का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई उद्देश्य नहीं। और वो जो भक्ति है जो उद्देश्य से कृष्ण को प्रसन्न करने का, उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, अर्थात दूसरी कोई भौतिक इच्छा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता ये नहीं होता है, और ज्ञान कर्म अर्थात अलग अलग तत्व ज्ञान और फ्रूटिव परस्यूट्स अर्थात कर भौतिक इच्छा, मुक्ति की इच्छा, ये सब चीजों से वो मुक्त होता है, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। अर्थात शुद्ध भक्ति वो सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त अनुकूल भाव से किए गए कार्य को शुद्ध भक्ति कहते हैं। उसका उद्देश्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, दैट इज द पॉइंट।
ओके सो प्रभु एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है थोड़ा। एक मतलब एक एक भक्त है मंदिर में जिसको मैं जानता हूँ, जो मतलब ज्ञान, जैसे आप इसमें भाई ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम, तो वो मतलब ऐसा है कि वो बहुत डीपली पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ते हैं, मगर संभव मतलब अभी तक उन काफी मतलब सालों से है, सोलह माला करते हैं, सब कुछ सही है, बट संभव गुरु की शरण ग्रहण करने में अभी भी संकोच कर रहे हैं, या वो सोच नहीं रहे हैं, या मतलब जो चीज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कृष्ण को प्रसन्न करेगी कि अगर हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, तो इस प्रैक्टिकली इस तरह के भक्त जो होते हैं जो ज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं और उनको मतलब जैसे मतलब ऐसा मेरा पर्सनली अनुभव है कि जब भी हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे, हमें एक बार ऐसा हुआ था कि हम कुछ क्विज कॉन्टेस्ट में थे, तो मैंने उनको देखा था कि उनका शास्त्र ज्ञान बहुत अच्छा है, उनको सब मतलब काफी एडवांस लेवल का इन्फॉर्मेशन उनके पास है, मगर फिर भी ऐसा मेरा दो तीन बार उनसे डिस्कशन भी हुआ है, बट ही इज नॉट ऑफ ही इज नॉट रियली इनटू गेटिंग शेल्टर ऑफ गुरु। और तो कैसे मतलब इस तरह के भक्तों मतलब हमें मतलब प्रचार करना चाहिए, कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे
यस। तो इस श्लोक के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लोग का तीन समस्या से अटक जाते हैं। यहाँ तक यहाँ एक्चुअली यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तो शुद्ध भक्ति की चर्चा है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जिसमें कई लोग क्या होते हैं कि वो कुछ निजी संतोष करने के लिए भक्ति करते हैं, कभी कुछ लोग इंक्विसिटिव होने के कारण भक्ति करते हैं, या कुछ लोग शरणागति में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से किसी के अंडर में नहीं आते, तो वो अहंकार के कारण ऐसा होता है कई बार, और कभी कभी कुछ लोग ज्ञान को प्राधान्य देते हैं, कृष्ण की इच्छा को नहीं देते प्राधान्य, तो वो कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य नहीं रहा, फिर वहां पर एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना वो नहीं रहा। तो ये पूरे श्लोक में वी विल डिस्क्राइब द एंटायर डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भक्ति, जिसमें वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर दे आर सिचुएटेड। यस, सो श्री प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति के एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों का वर्णन किए। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है प्राथमिक लक्षण, और सेकेंडरी का अर्थ होता है, व्हाट इज सेकेंडरी इन हिंदी, सेकेंडरी जो प्राथमिक नहीं है वो
द्वितीय,
दैट्स इट, व्हाटएवर। सो प्राथमिक लक्षण और सेकेंडरी लक्षण, देयर आर टू।
ये दिखा रहे गौण बता रहे हैं, गौण सहायक
और प्रधान। रघु स्वामी ने इसको उपयोग किया है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। जो प्राइमरी लक्षण है उसको स्वरूप लक्षण बोला जाता है, और सेकेंडरी लक्षण है उसको तटस्थ लक्षण बोला जाता है, तटस्थ। सो नाउ वी कैन गो फर्दर विद दैट। सो प्राइमरी लक्षण जो है उसके तीन प्रकार है। इस श्लोक का अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। एनीबडी हैज दिस श्लोक प्रभु, यू हैव प्रेमिलास प्रभु?
तो मैंने वो चैट में, चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर किया
है। ओह यू हैव दैट, सॉरी आई डिडंट केयर,
बट आई कैन शेयर द स्क्रीन।
ओह यू ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द स्क्रीन,
नहीं नहीं आई कैन शेयर चैट चैट बॉक्स में मैंने डाला है
तो
आई कैन शेयर द स्क्रीन
ऑल यू ऑल कैन सी द श्लोका
यस प्रभु
ओके मेबी यू कैन कीप ऑन द स्क्रीन देन तो ये श्लोक आपके सामने हम रख रहे उसको आप उस हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ा आसान रहेगा
ठीक है
देख देख पा रहे बट लोग यस
यस प्रभु
ओके ये श्लोक मे बी यू कैन जूम इट ये जो श्लोक है यू सी द श्लोक अन्यभिदासिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम दिस इज अभी श्लोक को हम डिवाइड कर रहे हैं तीन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है कृष्ण अनुशीलन और आनुकूल्यन अर्थात आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम ये है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर सेकंड लाइन में जो है वो अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम तीन चीज अनुकूल्यन एक कृष्ण दो अनुशीलनम तीन ये तीन है स्वरूप लक्षण प्राथमिक लक्षण प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानावृत द फर्स्ट लाइन वो है ततस्थ लक्षण अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानावृत यह ततस्थ लक्षण Is it clear? I think is easy to understand. ये श्लोक को नीचे की दो लाइन है भक्ति उत्तमा छोड़ दो वो तो उसका गोल है नीचे की दो लाइन में तीन पॉइंट है अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति कृष्ण अनुशीलन ये तीन है दैट इज प्राइमरी कैरेक्टर और ऊपर है दो अन्याभिलाषिता शून्यम एक दूसरा है ज्ञान कर्मा ज्ञानावृतम ठीक है अन्याभिलाषिता का अर्थ होता है सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग करना दूसरा ज्ञान कर्म आदि से अनावृत ये दो ये तटस्थ लक्षण है सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट स्वरूप लक्षण प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक सो Krishna, let us talk with Krishna. Anukulyana Krishna Muslim, let us start with Krishna. So, tin primary characteristic ke tin prakar hai. Kya hai? Ek, bhakti keval Krishna ke liye hai, number one. Jo ki Krishna shabd se hai. Number two, bhakti एक्टिव एंगेजमेंट है जिसको आप अनुशीलन कह सकते हो एक्टिव एंगेजमेंट अर्थात कार्यरतता कार्यरत रहना एक्टिव एंगेजमेंट एंड नंबर थ्री भक्ति जो है वो अनुकूल भाव से ही किया जाता है दैट्स इट दीज आर थ्री स्वरूप लक्षण भक्ति केवल कृष्ण के लिए है भक्ति एक्टिव एंगेजमेंट है अर्थात कार्य निरंतर कार्यरत रहना है और भक्ति जो है वो अनुकूल भाव से ही किया जाता है सो दैट दीज आर द थ्री प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें जो पहला है शुद्ध भक्ति जो है वो केवल और केवल कृष्ण के लिए है किसी और के लिए नहीं है इस तीन प्रकार की जो स्वरूप लक्षण में से सबसे महत्वपूर्ण ये है जो जो कि बीच में है अनुकूल्यन कृष्ण अनुसरण कृष्ण बीच में है तो सबसे महत्वपूर्ण यही है तो कई बार ऐसा लगेगा कि कोई कहेगा केवल कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं, तो हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं कि हम उनको प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम केवल कृष्ण के लिए ही है। सी कृष्ण को ही हम प्रेम कर सकते हैं और कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण की जब हम बात करते हैं प्रभुपाद सेज व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्ण तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को उनके कई एक्सपांशन उनके अलग अलग प्रकार के जो अंश विस्तार है उनके साथ की चर्चा करते हैं। कृष्ण और उनके कई अलग अलग प्रकार के एक्सपांशंस है वो सभी हमारी भक्ति को ग्रहण करने वाले हैं। मैंने एक्सपांशंस का प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, कृष्ण विथ उनके स्वांश उनके विभिन्न अंश और उनकी शक्तियां। जस्ट टू रिपीट, स्वांश विभिन्न अंश और प्रकृति शक्तियां। श्वास में आते हैं बलदेव संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न राम नृसिंह वरा, ये सभी विष्णु तत्व है अर्थात जो स्वयं भगवान का ही अवतार है, ये सभी उसके अंदर आ गए। कृष्ण के जब बात करते जब हम विभिन्न अंश की बात करते हैं उस समय हम जीव तत्व अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त गुरु आचार्य ये सभी इन सब की बात होती है। तो भगवान के कृष्ण उनके सारे अवतार यहाँ तक कि सब प्रकार के विष्णु अवतार भी ये स्वांश में आते हैं। विभिन्न अंश में सारे जीव मुख्य रूप से गुरुजन वैष्णव आचार्य परंपरा और शुद्ध भक्त ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और डिफरेंट एनर्जीज अर्थात अलग अलग प्रकार की प्रकृतियों की बात करते हैं जिसकी आपने चर्चा की थी, भूमि राप नल वायु और भगवान ने कहा था अपरायाम इतस्वन्याम, एक भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, ये तीनों ये सब प्रकार की शक्ति और स्वांश और विभिन्न ये सब मिलकर के कृष्ण होते हैं। दैट इज कृष्ण, व्हेन वी टॉक अबाउट कृष्ण दैट ऑल टुगेदर इज कृष्ण। और हमने अभी आपको बताया उसके अतिरिक्त संसार में किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, दिस इज ओनली एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली शुद्ध भक्ति केवल कृष्ण उसको रिसीव करते हैं, सो व्हेन वी वाटर द रूट देन वी डोंट नीड टू सेपरेटली डू एनीथिंग। बट प्रभुपाद इसको क्लियरिफाई करते हैं कि हमें कृष्ण को समझना चाहिए, इसका अर्थ होता है कृष्ण के साथ साथ उनके शुद्ध भक्तों को भी समझना है और उनके अवतारों को भी समझना है। और इसी चीज को प्रभुपाद जी आगे के दो पैराग्राफ छोड़ करके अब प्रभुपाद की ओर पढ़ोगे जिसमें प्रभुपाद कृष्ण के पैराफर्नेलिया कृष्ण का धाम उसको भी शुद्ध भक्ति को ग्रहण करने का साधन बताते, अर्थात इन सब का समावेश भी होता है, कृष्ण के पैराफर्नेलिया अर्थात उनके उनसे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं और उनका धाम, ये सब कुछ हमारी शुद्ध भक्ति को ग्रहण करते। तो सार के रूप में कंक्लूजन के रूप में कृष्ण ही एकमात्र शुद्ध भक्ति का एकमात्र विषय वस्तु है, वन पॉइंटेड लव फॉर कृष्ण। और कृष्ण को अगर आप प्रेम करते तो उनसे जुड़ी हुई डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हर एक वस्तु को हम प्रेम करते। इज दैट क्लियर, इज दैट मेक सेंस? So, does it make it clear?
Yes, Prabhu, question hai. Clear hai, but the question hai. What aapne bataya swans, vibhinans aur energies. So, jaise ye swans aur vibhinans to bahut clear hai ki wo to hamare liye pujaniya hai aur ke madhyam se ya to vibhinans ke madhyam se aur swans to Bhagwan Krishna ko hai. Aur jo उसमें इज इट फेयर टू से कि मतलब इन जो भी वस्तु या व्यक्ति जो भी है जैसे पराशक्ति और अपराशक्ति तो इसको हम भगवान की सेवा में जुड़ के या किस कृष्ण से कनेक्ट करके हम इसको भक्ति में यूज कर सकते हैं, हाउ टू से लाइक दैट, इज इट लाइक दैट?
हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारा जो प्रेम है हमारे प्रेम के द्वारा की गए जो भी कार्य है वो सारे कार्य में इन सब को आप समावेश कर सकते, जैसे अध्यात्म शक्ति है, ये सभी हमें सहायता करती है इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। तो गुरु आचार्यगण वैष्णव ये सभी का एकमात्र उद्देश्य भाव कृष्ण, आध्यात्मिक शक्ति हो या भौतिक शक्ति, तो उद्देश्य केवल यही है कि हाउ यू यूजिंग बाय द हेल्प ऑफ देम हाउ यू लव कृष्णा, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ द श्लोक।
ओके, और वो दूसरा क्वेश्चन है जो ये अनुकूल्य पे है, मगर उसमें आई थिंक हम और चर्चा करेंगे राइट, चलिए भी वहां पे कवर हो
जाएगा। अभी हम क्वेश्चन पर पहुंचे।
यस
Now we talk about Anushilanam. Anushilanam जो है वो active engagement है। Active engagement का अर्थ होता है कि आपको निरंतर उसके अंदर रत रहना पड़ता है। Active engagement. Prabhupada always said this thing. He it's not done with class or केवल प्रणाम करते हो हरे कृष्ण करो that's it, या फिर Prabhupada used to say it's not धर्मशाला, this is active business. तो अनुशीलन शब्द का एक अर्थ होता है cultivation, अनुशीलन करना, cultivation करना, cultivation by following the previous acharyas, जो पूर्व आचार्य है उनका पालन करके, उनके आदेशों का, उनके पद कमल पर चल करके cultivation करना। जब cultivation की बात आती है तो इसका अर्थ होता है activity, इसका अर्थ होता है कार्य करना पड़ता है। एक्टिविटी के बिना चेतना विकसित नहीं होती। तो श्री प्रभुपाद जी अनुशीलनम को दो भाग में बताते हैं, एक है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है कृष्ण के अनुकूल सभी कार्यों को करना, वो है प्रवृत्ति। कृष्ण से प्रतिकूल सभी कार्यों का त्याग करना, वह है निवृत्ति। और ये दोनों ही मन वचन और शरीर के द्वारा किया जाता है, शरीर मन और वाणी, शरीर मन और वाणी, चाहे वो पॉजिटिव अर्थात प्रवृत्ति हो और नेगेटिव अर्थात निवृत्ति हो। करना कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तो ये दोनों ही अनुशीलन में आते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के कार्य मन बुद्धि शरीर मन और शब्द के द्वारा किए जाते हैं। सो देयर इज अनु, दैट इज कंटिन्यूअसली रिपीटेडली और फॉलोइंग आफ्टर। अनु शब्द का ये तीन अर्थ होता है, कंटिन्यूअसली रिपीटेडली और फॉलोइंग आफ्टर। और शीलनम शब्द का अर्थ होता है संस्कृत का अभ्यास करना, सेवा करना, पूजा करना, ध्यान करना, ये चार अर्थ है शीलनम शब्द का। और ये चारों के चारों शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, शब्द के द्वारा अर्थात वाणी के द्वारा ऐसे किया जाता है। सो दैट इज अनुशीलन का वन पार्ट। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग। यस, एनी क्वेश्चन?
पूजा, अभ्यास, ध्यान और
सॉरी
शीलन का आपने बताया ना, चार जिसमें चीज आती है, पूजा करना, ध्यान करना, अभ्यास और
अभ्यास, सेवा, पूजा, ध्यान,
सेवा। और अनु का क्या है? अनु का
है कंटिन्यूअसली रिपीटेडली फॉलोइंग आफ्टर। सो आई विश डिवोटीज कैन आस्क क्वेश्चंस, व्हाई ओनली प्रेम विलास प्रभु। सो अनु शीलनम, अनु जो है उसका एक दूसरा एक अर्थ इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि चाहे वो प्रवृत्ति हो चाहे वो निवृत्ति हो, गुरु शिष्य परंपरा के बिना वो कोई भी कार्य कृष्ण के साथ जुड़ नहीं सकता। वी कैनॉट कनेक्ट अवर सेल्फ विथ कृष्ण। इसलिए रूप गोस्वामी यहाँ पर अनु शब्द का उपयोग कर रहे हैं, अनुशीलनम, जिसका अर्थ होता है कि जो अनु जैसे अनुसरण होता है ना, अनुसरण मीन्स यू फॉलो, अनुसरण यू फॉलो, दैट इज अनुशीलन, जो फॉलो करते हैं पहले के आचार्यों को फॉलो करते हैं, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा। आध्यात्मिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा वो उनको आज उनको फॉलो करके ही व्यक्ति कृष्ण तक पहुंच सकता है, देयर इज नो अदर वे। उसके सारे कार्य जो है वो कृष्ण की इच्छाओं को तभी पूर्ति कर सकते हैं जब वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हो, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। अनुशीलनम, देयर इज अनुशीलनम। प्रभुपाद कहते हैं इसके विषय में, वी कैन ऑफर मेनी सर्विसेस विथ आवर बॉडीली एक्टिविटीज, हम हमारे शरीर के माध्यम से बहुत सेवा दे सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के जो कार्य है वो कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, और यह संबंध जो होता है वो आध्यात्मिक गुरु के साथ उनकी सहायता से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से स्थापित किया जाता है। दिस रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय कनेक्टिंग वन सेल्फ विद द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण इन डिसिप्लिन सक्सेशन। सो दीक्षा के द्वारा आध्यात्मिक गुरु आपकी या हमारी सेवा जो है उसको शुद्ध बनाते हैं, उसको दोष मुक्त बनाते हैं, उसको स्वार्थ रहित बनाते हैं। अर्थात गुरु की कृपा के बिना, दीक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकता और वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। दिस इज कैसे कृष्ण प्रसन्न होता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। देयरफॉर अनुशीलनम इज रिक्वायर्ड। अनुशीलनम का और एक अर्थ ये भी है कि वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति के गाइडेंस में काम करता है, अर्थात सारी कार्य कृष्ण से जुड़े हुए सभी आध्यात्मिक माने जाते हैं, वो अंतरंग माने जाते, वो दे आर नॉट अंडर मटेरियल एनर्जीज। सो भक्ति जो कृष्ण का अनुसरण करती है अर्थात कृष्ण के अंतरंग शक्ति के माध्यम से होती है। सो इन समरी अनुशीलन हमको इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्द में, एनर्जी इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, अर्थात जो शक्ति है उसका गुरु के माध्यम से, समझो एक शक्ति है भगवान की, वो शक्ति कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु उनकी कृपा से उसको कृष्ण की सेवा में प्रयोजित किया जा सकता है और इस तरह से वो आध्यात्मिक हो सकता है, चाहे वो भौतिक शक्ति हो या व्हाटएवर। एनी शक्ति, एनी एनर्जी मस्ट बी स्पिरिचुअलाइज बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्ण। दिस इज द समरी ऑफ अनुशीलनम। नाउ वी टॉक अबाउट अनुकुल्येन। प्रभुपाद इसके एक लेक्चर में प्रभुपाद ने कहा था कि वन शुड फॉलो द प्रीवियस आचार्यस अनुशीलनम के साथ साथ। हमारा उद्देश्य हमारे गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य उनको प्रसन्न करना होना चाहिए, दैट इज अवर गोल, दैट इज अवर मेन पर्पस। इसलिए प्रभुपाद सेज तांदेरे चरण से भी भक्त सनिवास जन्म जन्म में हो यही अभिलास। हम आचार्यों के बताए गए मार्ग से विचलित नहीं हो सकते, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और यही तो एकमात्र योग्यता है, उनके आदेशों का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को रिपीटेडली कहता हूँ, प्रभुपाद सेड दिस, यू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र एंड फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल, योर स्ट्रेंथ इज देयर, जस्ट लाइक हिमालय माउंटेन। जैसे कोई हिमालय पर्वत है उसको कोई धक्का नहीं मार सकता, वो इतना स्ट्रांग है। ये चित्र में आपको रिक्वेस्ट है, जहां हो सर्वसिद्धि हो। अगर हम आचार्यों के बताए गए गाइडेंस से तनिक भी विचलित नहीं होते तो संसार की कोई शक्ति हमें हिला नहीं सकती, जैसे हिमालय माउंटेन की तरह। बट ओनली कंडीशन इज हमें रूप सनातन जैसे जो हमारे आचार्य है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज रूपानुगा, रूप अनुगा, रूप को स्वामी के चरण कमल को फॉलो करने वाले और फिर कुछ नहीं होने वाला। देन नोबडी विल हार्म मी, कौन ते प्रतियान है नमे भक्ता प्रश्न। अगर आप आचार्यों के बताए गए मार्गदर्शन को स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बहुत ही पालन करते हो प्रिंसिपल को, देन नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। दैट प्रोपर सेज सो दैट इज कॉल्ड अनुशीलनम। नाउ वी टॉक अबाउट अनुकूल्येना। अनुकूल्येन का अर्थ होता है कृष्ण, ये भक्ति जो है उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना ही है, जिसमें एक्सीडेंटली इंसिडेंटली अगर कृष्ण को प्रसन्न कर दिया गया वो शुद्ध भक्त नहीं है। नो, हमने हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं था तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। जिसमें जैसे कि वन मिनट ऐसे कई बार एक एग्जांपल दिया जाता है कि आई जस्ट हर्ड दिस एग्जांपल रिसेंटली कि एक भक्त यहां से बरोड़ा जा रहा था और उसने अपने घर पे कुछ कचौरियां बनाई थी और उसकी इच्छा थी कि वो फॉर एग्जांपल हरीश प्रभु ने कचौरियां बनाई थी। आप लोग बनाते हो ना, मैं तो याद है ना आपको अच्छा ठीक है। तो ये कचौरियां बनाई थी और उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि ये कचौरी वो यहां से बड़ौदा जाने से समय प्रेम विलास प्रभु को देके जाए। उनका मन में इच्छा था कि प्रेम विलास प्रभु इसको खाए। भोग लगा दिया है, एवरीथिंग इज डन। सो अभी आप जाते समय यू नो आप एक दूसरे को मिल नहीं पाए बट यू पुट इट समवेयर, आपने इसको कहीं पर रख दिया और आपने फोन करके उनको बोला कि प्रभु जी याद करके यहाँ पर आपके लिए कचौरी रखी हुई है स्थान पे, उसको याद करके ले लेना। दैट इज इंटेंशनल, ये इंटेंशनल हुआ कि ये इट वॉज मैंट फॉर यू, ये आपके लिए बनाया है, भगवान को भोग लगाया हुआ है आपको, आप खाए, ये हमारा उद्देश्य है, सो यू प्लीज एक्सेप्ट इट। फोन करके याद करके ले लेना, यू नो लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल। ये हुआ अनुकूल्येना, इंटेंशनल। और आपका उद्देश्य ऐसा नहीं था, आपका ऐसा भाई बहुत कचौरी बन गई है और इतना सारा मैं ट्रैवलिंग प्लेन में अलाउ नहीं करेंगे तो थोड़ा कचौरी हमने रखा हुआ है, जिसको भी चाहिए ले सकते हैं। एनीबडी हु वांट्स दे कैन टेक। सो इसका अर्थ क्या हुआ, इट्स नॉट इंटेंशनल, फिर वो कोई भी ले सकता है। तो दैट इज द आइडिया इज कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य के साथ की गए कार्य है, दैट इज शुद्ध भक्ति। अचानक बाय यू नो एक्सीडेंटली हो गया वो कार्य नहीं, दैट इज नॉट डिवोशन, आई मीन दैट इज नॉट शुद्ध भक्ति। So, ये चीज हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद एक एग्जांपल ये भी दिया है जो कि जीव गोस्वामी ने उस पर कमेंट भी किया है, इसी प्रभुपाद ने इसको यूज किया है उस एग्जांपल के रूप में। आई जस्ट फाइंड आउट इट, यस। जैसे फॉर एक आर्मी और उनका वेपन्स, ये समझ लो कि जीव गोस्वामी तीन एग्जाम्पल देते हैं। अगर राजा जब कहते हैं आर्मी को कि तुम रेडी हो जाओ, तो इसका मिनिस्टर लोग क्या समझेंगे कि भाई सब अपने अपने हथियार सबसे सुसज्जित हो जाए, राइट? तो राजा को अलग से कुछ बोलना नहीं पड़ता है ऐसा कि भाई तैयार हो जाओ, का ये नहीं कि आप हथियार वगैरह अलग से बोलना पड़ेगा। अब जब राजा ऐसा कहेंगे कि हम सभी हमारे सैनिकों को, योद्धाओं को हम भोजन के लिए बुलाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि सारे सैनिक अपने अपने हथियार भी साथ में लेके आए। दैट मीन्स उद्देश्य क्या है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज डिजायर। उनको अनुकूल होना चाहिए, उनकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, उनको ही एकमात्र उद्देश्य बना करके किया गया कार्य उसको फेवरेबली किया जाए, दैट इज अनुकूल। एटीट्यूड होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने का। अगर एक्टिविटी कृष्ण को प्रसन्न करती है लेकिन आपका इच्छा कृष्ण को प्रसन्न करने का नहीं था, आप समझे, आपके कार्य कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं बट आपका इंटरनल आपका इच्छा ऐसा उद्देश्य नहीं था, वो बाय चांस हो गया या तीर लग गया कि कृष्ण खुश हो गए, तो दैट इज नॉट शुद्ध भक्ति। मीन्स यू डिजायर इनसाइड योर हार्ट दैट मेरे कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो, एंड वो कार्य के द्वारा कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो दैट इज शुद्ध भक्ति। सो दैट इज अनुकुल्येन। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद कहा है कि रावण, कंस, हिरण्यकशिपु ये लोग भी तो कृष्ण का चिंतन करते थे, निरंतर चिंतन करते थे। कंस तो कैसा चिंतन करता था, आठवां स्टेप आता था तो उसको लगता था कि कृष्ण का शब्द से कृष्ण ही दिखता था उसको, इतना चिंतन करते थे कंस, रावण, हिरण्यकशिपु। लेकिन वो लोग कृष्ण को शत्रु भाव से देखते थे, तो इस प्रकार की भक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं माना जाता, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये प्रतिकूल भाव से किया गया है, अनुकूल भाव से किया गया है वो है यशोदा का डांटना, एपेरेंटली कृष्ण को अप्रसन्न करता है, लेकिन कृष्ण का, यशोदा का उद्देश्य यही है कि वो कृष्ण को प्रसन्न करे, दैट इज द मेन पर्पस। सो द पॉइंट हियर इज कि कृष्ण को प्रसन्न करना ये एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, दैट इज ओनली पॉइंट वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट तटस्थ लक्षण। I don't know what that is.
दो क्वेश्चन है, जैसे अब ये अनुकूल्य ने जो है इसमें जिसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है फेवरेबल, तो इसको हम क्या युक्त वैराग्य बोल सकते हैं कि भगवान की भक्ति में जो चीज है उसको हमें यूज करना चाहिए?
यस, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए।
फर्स्ट दो लक्षण,
यस प्रभुपाद जी, यस
हमारा जो मार्ग है वो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है कि हम मटेरियल लोगों की तरह प्रवृत्ति में हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वी आर इन द निवृत्ति मार्ग, राइट?
या देयर इज डिफरेंट वे ऑफ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ प्रवृत्ति निवृत्ति। यहाँ पर हम अनुकूल प्रतिकूल को प्रवृत्ति निवृत्ति के रूप में ले रहे हैं, और एक दूसरे को तो उसका मूल तत्व तो एक ही है कि जो प्रतिकूल को त्याग कर रहे हैं। सो प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर्स में, कुछ लेक्चरों में न्यू इंडिया में प्रभुपाद ने बहुत लंबा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, तो प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि कृष्ण का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, वही फेवरेबल होता है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। मेरा समाज, मेरा देश, मेरी इंद्र तृप्ति, वो सब शुद्ध भक्ति में नहीं आती है। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम मेरा भक्त है और तुम मेरा सखा है, देयर इज अ क्वालिफिकेशन। अर्जुन वेदांत नहीं जानता था, अर्जुन एक राजा, एक गृहस्थ, साधारण व्यक्ति जो युद्ध करने वाला था, उसको युद्ध करना आता था और ज्यादा वेदांत फिलोसॉफी नहीं आती थी, फिर भी वो शुद्ध भक्त माना गया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अनुकूल रूप में कार्य कर रहा है, देयर इज अ क्वालिफिकेशन, कृष्ण को अनुकूल रूप में कार्य करना चाहिए। जैसे कृष्ण का वो आपको वो एग्जांपल तो पता ही होगा, एक बार कृष्ण ने ऐसा नाटक किया था कि वो बीमार है, नारद मुनि को बुलाया था, बहुत सारे डॉक्टर को बुलाया, बहुत सारे डॉक्टर आए और सब लोगों ने कहा, कृष्ण ने कहा कि कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता, अगर मेरे भक्त अपने चरणों की धूल मेरे सिर पे लगाएंगे तभी मैं ठीक होऊंगा। तो सभी भक्तों को पूछा गया, भाई तुम अपने चरण की धूल दोगे? चरण की धूल? सबने बोला पागल हो गया, हमारे चरण की धूल कृष्ण को थोड़ी दे सकते, किसी ने नहीं दिया। तो नारद मुनि सोचने लगे, हाउ डू आई गेट दैट? सब लोग सोचने लगे कि मैं अपने चरण की धूल कैसे दे सकता हूँ। सो कृष्ण टोल्ड देम लास्टली, यू गो टू वृंदावन, तुम वृंदावन जाओ एंड देयर यू विल फाइंड गोपीस जो तुम्हें दे सकते हैं। तो वहां पर गए, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, वो देगी। तो वो लोग वहां पर जाके पूछा कि देखिए कृष्ण को सिर दर्द हो रहा है, तो आप कृपा करके अपनी चरण की धूल देंगे? उन्होंने कहा कि वही उनका उपाय है। तो जैसे गोपियों ने सुना, क्या कृष्ण बीमार है और उनको हमारे चरण की धूल चाहिए? ओह श्योर, कितना चाहिए आपको? ले जाओ पूरा 2 किलो 5 किलो, पूरा जितना चाहिए ले जाओ, व्हाट एवर यू वांट। उनको ये नहीं लगा किसी को, अरे भाई तुम अपने चरण की धूल कृष्ण को दोगे तो तुम जानते हो इसका परिणाम क्या आएगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ओह, कि हमें इससे कोई परवाह नहीं है कि हमें नरक में जाना पड़े, कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, कृष्ण ठीक हो जाना चाहिए, हमारे हमारी कोई चिंता नहीं है। That is उत्तम भक्ति। नो बार्गेनिंग, नो बार्गेनिंग विद कृष्ण, कृष्ण के साथ कोई बार्गेनिंग नहीं। मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा प्रोवाइडेड, शर्त यह रहेगी कि मेरे साथ सब कुछ एडजस्ट हो जाना चाहिए, मेरे सब पाप नष्ट हो जाना चाहिए, मुझे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं करूंगा, मेरे परिवार को सब प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए, पूरा सुविधा मिलना चाहिए, उनका ध्यान रखे भगवान, समृद्धि आए हमारे घर में, मेरा मान यह सब बढ़ना चाहिए, ये सब कंडीशन के साथ नहीं किया जाता। दैट्स ऑल बार्गेनिंग, दीज आर ऑल बार्गेनिंग। द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वन शुड बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान देने की तैयारी होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। इट डजेंट मैटर, प्रभुपाद ने कहा इन वो लेक्चर में कह रहे, इट डजेंट मैटर माई फेथ, माई ऑनर, माई मनी, माई प्रेस्टीज, मेरा मान, मेरा धन, मेरा संपत्ति, सब कुछ त्याग करने को तैयार हो, कृष्ण मस्ट बी सेटिस्फाइड। सेम थिंग अर्जुन डिड, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ त्याग करने को तैयार, सब कुछ, अपने गुरु को मार हम मार देंगे, भीष्म को मार हम मार देंगे, दैट इज शुद्ध भक्त। गोपियां जो थी वो ज्ञानी नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी साधारण सी गांव की लड़कियां थी, ज्ञान क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार थे, एंड दैट इज अनुकूल कृष्णाचार्य। जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया था क्योंकि वो भक्ति के प्रतिकूल थे, इसलिए इसके कारण बलि महाराज महाजन बने। सो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल एंड वी हैव टू रिजेक्ट व्हाट इज नॉट फेवरेबल। So I have to accept everything for Krishna, I will accept, you know, same thing. And I will reject what is not favorable. So that is Anukulyena. So, more questions? Okay. So we now it is 9:53. What do you suggest, Premidas? We should do some exercise, or we can finish up the secondary characteristic, then introduction is complete.
I think you should take rest.
Where all other devotees there. Secondary characteristic will take at least 10-15 minutes. Is there any question anybody has?
Yeah, I have one question, a short question. चाहते हैं कि जो already 10 बज गए हैं, मैंने 8 से 10 का session किया था, तो दूसरा एक reason ये मुझे पता नहीं है 10 बजे automatic बंद हो जाएगा या नहीं, but मुझे कभी ऐसे नहीं से 8 से 10 का किया था, तो वो 10 बजे के बाद ही continue होगा या नहीं? Next time तो मैं ज़्यादा कर लूँगा schedule, but फिलहाल तो
हमारा प्रयास है कि वी ट्राई टू कवर यू नो इन अ लॉन्गर सेशन इंस्टेड ऑफ 1 आवर वी कैन हैव 2 आवर्स अराउंड.
हां नहीं नहीं श्योर, तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा 10 बजे से आपको 2 घंटे से ज्यादा ही 2.5 घंटा ऐसा.
ओके, लेट मी टेक द फीडबैक. वी स्टॉप हियर, वी टेक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक लेटर. आप भक्तों को हमने सेपरेटली अभी ये चैप्टर डिस्कस किया आपके साथ, आपका फीडबैक कैसा है कि हम इसको साथ में पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा ज्यादा, बट व्हाट इज योर फीडबैक?
हेलो, देखो दोनों ही ठीक है, मतलब इस तरह भी अच्छा है.
ओके, बहुत कंफर्टेबल. ठीक है, हरीश प्रभु.
यस प्रभु, दोनों रखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, मिक्स रखेंगे
वो कंफर्टेबल है. फाइन, गिरीश प्रभु. आई डोंट नो वेदर इज माय वॉइस ऑडिबल टू हिम. ओके, दिव्या हरी प्रभु.
प्रभु कंफर्टेबल बरोबर है.
ओके, गिरीश प्रभु आप कुछ कह रहे थे? ओके, कृपा विश्वम्भर प्रभु आपका क्या मानना है? आई एम सॉरी, आप भक्त को मैं जगह के रख रहा हूँ.
दोनों साथ में होंगे तो अभी क्लास चलेगा.
ओके, प्रेमराज तू आपका क्या सुझाव है?
मैं गिरीश प्रभु को फोन किया प्रभु, तो वो बोल रहे कि मैंने बोला आई थिंक ही विल ज्वाइन और अनम्यूट करके वो बोलेंगे.
प्रभु जी हमारा थोड़ा
उनकी आवाज नहीं आ रही है. हरे कृष्ण. हरे
कृष्ण.
हाँ अभी आ रहा है. आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी? गिरीश प्रभु ओके, नो प्रॉब्लम. सो
प्रभु उन्होंने मुझे ये बताया, कि वो बोल रहे कि ठीक कर देंगे तो अच्छा है, आपको मतलब थोड़ा कम स्ट्रेस रहेगा. मतलब दो बार
मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, मेरा केवल एक ही यहाँ पर एक ही पॉइंट है, उसके विषय में आपका क्या मानना है? मैं ये नहीं चाहता कि हम दो बैच को मर्ज करें और उसमें फिर आप इंटरेक्शन आपका कम हो जाए, आप प्रश्न पूछने से हिचकिचाए, आप प्रश्न पूछने में यू नो आप उसको इग्नोर करें, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन कम आने लगे, आपकी एक्सरसाइज में आप ज्यादा कुछ चिंतन में नहीं लग पाओ, तो ये सब ना हो एकमात्र वन ऑफ द मेन पर्पस बिहाइंड दिस। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज में कुछ नुकसान नहीं आएगा, आप पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और साथ साथ में आप प्रश्न भी पूछ पाएंगे, क्योंकि हम आपको थोड़ा ये फ्रीडम हम चाहते हैं कि आप अनुभव करो कि 25-30 भक्तों के सामने कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैसे पूछें, पर हम चाहते हैं कि आप पूछिए, अवश्य पूछिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य हमारा कि लॉकडाउन में है, नहीं तो हम फेस टू फेस बात करते तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता। सो दिस इज द वन ऑफ द कंसर्न। सो मे बी डिवोटीज कैन जस्ट सेंड अ मैसेज हियर, व्हाट इज देयर ओपिनियन, कि हम भी ऐसा चाहते हैं कि मेरे लिए भी दो बार बोलना आसान नहीं होता, एक का एक पॉइंट, सेम पॉइंट आई हैव टू रिपीट अगेन इन सेम वीक, बट माय कंसर्न इज जस्ट टू गिव यू मोर बेनिफिट, दैट्स इट। आपके लाभ के लिए मैं दो बार बोलने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, देयर इज नो अदर रीजन। सो आई अंडरस्टैंड कि डिवोटीज आर कंफर्टेबल, कि हम अगर दो बैच को साथ में करेंगे तभी भी आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। ओके,
यस प्रभु,
यस प्रभु, नहीं होगा।
तो मैं आपका स्टडी जो होता है उसमें कहीं पर भी बाधा नहीं डालना चाहता, बस यही एक रीजन था, अगर आप कंफर्टेबल है तो हम दो बैच को करेंगे साथ में। So we continue प्रेम विलास प्रभु, no problem।
Okay।
तो मैं आप ही में कोऑर्डिनेट करूंगा, फोन पे बात कर लेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर कब होगा।
Okay।
तो वे थैंकफुल, आप भक्तों ने निर्जल एकादशी का दिन इतना तपस्या किया हुआ था ऑलरेडी, और 2 घंटा तपस्या किया, आप सुनते रहे निरंतर, और ऐसा माना जाता है कि जो लोग निर्जल एकादशी करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उनको कम से कम 12 बजे तक तो जगना चाहिए, आइडियली पूरा रात जगना चाहिए, और दूसरे दिन सुबह गंगा स्नान करके, वैष्णव को पूजा करके, भक्त ब्राह्मणों को भोज प्रार्थना करा करके, उनको दक्षिणा दे करके, उनके आशीर्वाद लेकर के फिर हमें पालन करना चाहिए, एंड दैट यू कैन गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट। सो maybe आप भक्त लोग इसका पालन कर सकते हैं, और जिन लोग का शरीर से बीमार हो सके ऐसा हो, कृपा करके ऐसा मत सोचना कि ये पालन करना ही पड़ेगा, हमें बीमार होएंगे तो लॉकडाउन में बहुत परेशानी आएगी, इसलिए बीमार ना हो उसका ध्यान रखना। इसलिए अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आप कमजोर हो रहे हो, कल आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, तो तपस्या इम्पोर्टेंट नहीं है, सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तपस्या आज है कल नहीं है, सेवा हमेशा होनी चाहिए, इसलिए हम प्रेफरेंस इज सर्विस नॉट तपस्या। इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि तपस्या हो सकती फिर भी नहीं करेंगे, तपस्या हो सकता है तो अवश्य कीजिए, इससे हमारा अहंकार वश में आएगा, इंद्रियां वश में आएगी, और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। सो वी स्टॉप हियर प्रेमिला, सो